नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री यरूशलम में इसराइल की संसद को कुछ देर में संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इसराइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसराइल के तेल अवीव में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रौद्योगिकी, जल संसाधन प्रबंधन, कृषि और मानव संसाधन विकास में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे प्रमुख रहे। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों पर भी गहन विचार विमर्श किया। श्री मोदी की 9 वर्ष में ये दूसरी इसराइल यात्रा है। इससे पहले इसराइल के 2 दिन के दौरे पर तेल अवीव पहुंचने पर श्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी भरे स्वागत पर कृतज्ञता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि वे कल द्विपक्षीय चर्चाओं में शामिल होने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। ये भारत इसराइल मित्रता को और मजबूत करेंगे। श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यरूशलम में इसराइल की संसद को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इसराइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत इसराइल मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच सार्थक वार्ता हुई। ये आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दर्शाती है। इसराइल की अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार प्रशासन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल समझौते पर बातचीत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले के शेगांव में 4 दिन के राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ नागरिक देश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आजकल प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे नियमित व्यायाम, उचित खानपान और संतुलित जीवन शैली पर बोल दिया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम में समेकित चिकित्सा पद्धति का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए विश्व भर में लोग योग का अपना रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि ये आरोग्य मेला आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है।
इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रूपए वितरित किए जा चुके हैं। श्री सिंह ने AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के बारे में जानकारी दी।
भारत विस्तार ऐसा AI प्लेटफॉर्म है कि जिसमें किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके वो कोई IT एक्सपर्ट नहीं होता कि डाउन करो कि लोड करो, उसको सीधे वो मोबाइल पर सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो ये भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प पर बल दिया। इससे स्थानीय उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने इस परिकल्पना को साकार करने में भारतीय राजनयिकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। नई दिल्ली में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के प्रमुख आयातक से निर्यातक बनने तक का लंबा सफर तय कर चुका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि भारत ऊर्जा परिवर्तन, सतत आर्थिक परिवर्तन, प्रकृति आधारित समाधान और डिजिटल पर्यावरण प्रशासन, इन चार रणनीतिक क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधारों को आगे बढ़ा रहा है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री यादव ने कहा कि हमें सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर विकास को परिभाषित करना है।
We speak of redefining development.
हमने पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर सामाजिक न्याय और अंतर पीढ़ीगत समानता के साथ विकास को परिभाषित करने की बात की। भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना, 2005 के स्तर से GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना, 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रति बुनियादी ढांचा तैयार करना।
बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने कहा है कि इस वर्ष फरवरी तक PM ई ड्राइव योजना के अंतर्गत 28 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचे जा चुके थे। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री कुमार स्वामी ने बताया कि इनमें 20 लाख से अधिक दोपहिया वाहन और लगभग 3 लाख तिपहिया वाहन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी गई है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार अस्थायी श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि जनहित से समझौता करना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है।
राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ऊंची राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। दिस इज द कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी एंड गांधी फैमिली दैट वी सी टुडे, वेदर इन पार्लियामेंट, वेदर आउटसाइड पार्लियामेंट। वी हैव सीन द बिहेवियर विद द प्रेस। यू कांट इवन आस्क एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू मिस्टर राहुल गांधी। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आगामी पुद्दुचेरी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को नकद या मुफ्त उपहारों से प्रभावित होने से रोकने के लिए निर्वाचन आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। पुद्दुचेरी में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद श्री कुमार ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुष्टि की कि मतदाता सूची पूरी है और कोई भी पात्र मतदाता छूटा नहीं है। एक रिपोर्ट।
आगामी चुनावों में शुरू होने वाली नई पहलों का विवरण देते हुए श्री ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पहली बार मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल डिपॉजिट काउंटर स्थापित किए जाएंगे और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें प्रदर्शित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पुडुचेरी के सभी 1,099 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ये भूतल पर स्थित होंगे, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था होगी। एकीकृत EC iNet एप्लीकेशन प्रमुख मतदाता सेवाएं, उम्मीदवारों की जानकारी और वास्तविक समय के चुनाव डेटा प्रदान करेगा। पुडुचेरी से विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सौम्या शरण।
इससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ आज चेन्नई पहुंचे। आयोग का ये दल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। इस दौरान दल जिला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तैनात किए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया है। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि GPS ट्रैकिंग प्रणाली से आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आयोग ने पिछले चुनावों में इनकी निष्प्रभावी तैनाती को लेकर मिली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में आज माओवादी मल्लेश और रानू पोडियाम ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि मल्लेश काफी लंबे समय से कांकेर और नारायणपुर जिले में सक्रिय था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और स्वीडन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में साझेदारी और मजबूत की है। इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया एआई मिशन और बिजनेस पर स्वीडन ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये एआई समाधानों के विकास और उनके उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानूनी अनुसंधान को बढ़ावा देने और मुकदमों से संबंधित डेटा का विश्लेषण करके कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में संपन्न हुए इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में ये बताया गया कि किस प्रकार भारत की कानूनी व्यवस्था में एआई तेजी से बदलाव ला रहा है। सम्मेलन में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लेक्स लेगिस एआई के प्रबंध निदेशक साकार यादव ने कहा कि उनका उत्पाद कानूनी दस्तावेजों के मसौदा तैयार करने को और अधिक बेहतर बनाएगा।
हम लोग एक लीगल एआई जिसको हम लोग लीगल एड कहते हैं, जिसमें तीन मुख्य चीज है, आस्क, इंटरैक्ट और ड्राफ्ट। आस्क जो है वहाँ पे आप केस रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग भारत के सबसे बड़े डेटा, जुडिशियल डेटा का हम लोग एक कलेक्शन है जिसको हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट्स में मुद्दे में तोड़ा है। इसके अलावा एयर गैप मॉडल है जो आप लोग बिना इंटरनेट का अपना लीगल एआई यूज कर सकते हैं।
भारत और नेपाल ने वन, वन्य जीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता नई दिल्ली में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और नेपाल सरकार के वन तथा पर्यावरण मंत्री माधव प्रसाद चौलागेन की उपस्थिति में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान की कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। ये समझौते कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटिंग तथा रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों के साथ किए गए हैं। श्री आदित्यनाथ दो दिन के जापान दौरे पर हैं। रेल मंत्रालय ने पेंशन धारकों को साइबर धोखाधड़ी और रेल अधिकारियों के रूप में जालसाजी करने वालों से सावधान रहने को कहा है। कुछ साइबर जालसाज रेल अधिकारियों के नाम पर फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं और एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वो पेंशन भुगतान आदेश या सेवा रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कोई लिंक या संदेश नहीं भेजता। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने आज ऑस्ट्रेलिया पर रोमांचक मुकाबले में 3-1 से जीत दर्ज की है। 1-1 से मुकाबला बराबरी पर होने के बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया। शूटआउट में शिलानंद लाकड़ा, मनिंदर सिंह और विष्णुकांत सिंह ने भारत के लिए गोल दागे। ये भारत की इस प्रतियोगिता में पहली जीत है। कोलंबो में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान मिचेल सेंटनर ने सर्वाधिक 47 रन बनाए हैं। महेश तीक्ष्णा और दुष्मंता चमीरा ने 3-3 विकेट लिए। अहमदाबाद में कल दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से और चेन्नई में शाम 7 बजे भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल अवीव में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यरूशलम में इसराइल की संसद को कुछ देर में संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इसराइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत की। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। और आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।